بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی باسر زی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے پاکستان کے قبائلی علاقوں پر امریکہ کے ڈرون حملے اور تحریک انصاف پاکستان عمران خان کی زیر قیادت پارٹی کا امن مارچ۔ اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد۔ جناب ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور مسلسل خبروں میں آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ جس امن مارچ کی بات گزشتہ کئی ہفتوں سے ہو رہی تھی اور جس کا شور بھی تھا اور جس کی تیاریاں بھی کافی عرصے سے کی جا رہی تھی، یعنی تحریک انصاف پاکستان کا امن مارچ وزیرستان کی جانب اور وہ بھی ڈرون حملوں کے خلاف، وہ بہرحال مارچ جس کو امن مارچ کا نام دیا گیا انجام پایا لیکن وزیرستان تک نہیں پہنچا۔ مارچ تو ختم ہو گیا لیکن مارچ کے بعد بحثوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ بعض حلقے اسے بہت ہی کامیاب امن مارچ کا نام دے رہے ہیں، بعض اس کی مخالفت کر رہے ہیں، بعض یہ کہہ رہے ہیں کہ ناکام رہا، بعض یہ کہتے ہیں کہ کچھ تو ہوا، بعض یہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہ ہوا۔ بہرحال یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کا ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ چلتے ہیں سیدھے اسٹوڈیو اسلام آباد جہاں پر موجود ہیں تحریک انصاف پاکستان کے مرکزی رہنما اور ساتھ ہی پاکستان کے سینئر اور سرکردہ صحافی جناب غلام اکبر صاحب، ان سے پوچھتے ہیں ان کی پارٹی کا موقف کیا ہے اس امن مارچ کے تعلق سے اور کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا کامیاب ہوا، اور ظاہر ہے کہ دوسرے فریقوں سے بھی ہمارے ساتھی کوشش کریں گے کہ رابطہ ہو اور ان کے خیالات بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ جناب غلام اکبر صاحب السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
جی غلام اکبر صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کتنا کامیاب رہا آپ کا امن مارچ اور جو مقاصد آپ نے طے کیے تھے وہ کتنے حد تک پورے ہو سکے آپ کے خیال میں؟
دیکھیں جی، اس کے بنیادی طور پہ اگر آپ مقاصد کو انیمریٹ کریں تو تین بنیادی مقاصد تھے۔ ایک تو یہ کہ جو ڈرونز کا جو معاملہ ہے اور ڈرون حملوں سے جو سول پاپولیشن پہ جو ایک ظلم ہو رہا ہے اور جس انداز میں خاندانوں کے خاندان جو ہے نا وہ تباہ ہو رہے ہیں، وہ انٹرنیشنل فوکس میں لایا جائے۔ اور اس لحاظ سے اگر دیکھیں کہ دو دن تک کم از کم انٹرنیشنل میڈیا اور ہمارا تو سارا میڈیا تین چار دن تک اسی ایک خبر پہ فوکس رہا ہے، یعنی ایک ہم میڈیا کے دور میں رہ رہے ہیں، یعنی اویئرنیس جو ہے اس کا سارا انحصار میڈیا پہ ہے۔ تو ایک یہ بنیادی مقصد تھا۔ اس مقصد میں تو ظاہر ہے ہم یہ پروگرام آج کر رہے ہیں، یہی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ مقصد پورا ہوا۔ دوسرا یہ کہ لوگوں کو، انٹرنیشنل کمیونٹی کو احساس دلایا جائے کہ جن علاقوں کو انہوں نے اس قابل سمجھا ہوا ہے کہ وہاں فوج کشی کی جائے، وہاں مار دھاڑ کی جائے، وہاں ان علاقوں پر بمباری کی جائے اور بمباری ہوتی بھی رہی ہے، وہ علاقے بنیادی طور پہ ہیں کیا؟ یہ آپ نے درست کہا کہ وزیرستان کے اندر نہیں گئے، اور بنیادی مقصد جہاں تک عمران خان صاحب کا تھا وہ بالکل ڈٹرمنٹ تھے کہ وہ پوری کوشش کریں گے، سوائے اس کے کہ اگر انہیں روکا گیا تو قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے۔ لیکن یہ بذات خود ایک بہت بڑا، آپ اس کا دیکھیے نا اسکوپ دیکھیں، تھاؤزنڈس آف کلومیٹرز جو ہے نا آنا جانا جو ہوا ہے، تقریباً یوں کہیے مور دین 1000 کلومیٹرز۔ اچھا، اندر جانا اور ٹانک جو ہے وہ ایک ایسا، وہاں سے سمجھ لیے کہ بلوچستان شروع ہوتا ہے، وزیرستان کے اندر علامتی طور پر داخل ہوئے۔ اب ایک بات یاد رکھیں، جو لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ وہ مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے، وہ بھول رہے ہیں ہم کوٹ کہیں پہ کچھ جھنڈا لہرانے تھوڑی جا رہے تھے، دیٹ واز ناٹ دا پرپز۔ مقصد جو تھا کہ ساؤتھ وزیرستان کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا تھا मुझे अच्छी तरह, मैं उस वक्त मैं नहीं मार्च में गया, मैं कुछ आई हैड अ बैक प्रॉब्लम, लेकिन मैं इन टच था थ्रू आउट। जब ये मुदाकरात हो रहे थे जिस चौकी से उन्हें वापस आए हैं, वहाँ जो मुदाकरात हुए, एक मैं एक अलामती तौर पे एक बात कर रहा हूँ, एक मेजर ने कहा जी कि हम खान साहब से कि हम आप पर हमें बड़ा फ़ख्र है कि आप यहाँ आए, यहाँ तो कोई भी नहीं आता, आप में इतने दिलेरी से काम लिया, आप यहाँ आए, लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी शुरू होती है, हम इससे आगे आप इसलिए नहीं जा सकते कि हम पर आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी है, आपके पीछे जो लोग जा रहे हैं, और यहाँ शाम के बाद हम जो है ना, यहाँ हम खुद भी बाहर यानी मूवमेंट नहीं निकले, क्योंकि यहाँ एम्बुशेस बहुत होते हैं और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ कुछ भी किसी वक्त भी कोई हो सकता है, तो हम आपको एडवाइस नहीं करेंगे। रोका नहीं उन्होंने, अब आप फैसला कर लें कि आपको जो पीछे जिन लोगों के साथ आवारे हैं उनकी आपको ज़िंदगी अजीज है, या आप अगर आपका मकसद था पूरा, ये बिल्कुल एक मुकालमा हुआ है वहाँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ। तो खान साहब डिसाइडेड एट दिस पॉइंट कि मकसद पूरा हो गया था कि जलसा, बाकी जो है ना देख पूरा फोकस इंटरनेशनल तवज्जा, लोग भी आए, अपना जो दुनिया भर की जो ह्यूमनिटेरियन कॉजेज़ की जो कुछ तंजीमें हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, ड्रोन्स का जो यानी एक रोल है मौजूदा जेनोसिडल रोल है, मैं इसमें थोड़ी सी बात इसे आगे चल के मैं एक्सप्लेन भी
जी, बहुत शुक्रिया,
करूंगा,
मैं फिर हाजिर हूँगा
कि
आपकी खिदमत में।
अमेरिकन जो जो यूँ कह लीजिए कि वैश्याना उसका मिजाज है और वो सिविलाइजेशन का अपने आप को अलमबरदार कहता है, लेकिन जिस जुल्म और बर्बरियत के साथ उसने हिरोशिमा पे एटम बम फेंका था, इसी से वो ड्रोन फेंकते हैं। उनके लिए ह्यूमन लाइफ, देखिए ना, इंसानी ज़िंदगी, ख्वाह 50 आदमी मरे, ख्वाह 80,000 जापानीज मरे थे उसमें, वो तजर्बा तजर्बागाह नहीं है। ह्यूमन बीइंग्स आर ह्यूमन बीइंग्स। आप एक आदमी को या दो आदमी को, तीन आदमियों को, फ़र्ज़ करें कि अगर उनकी इस दलील को मान भी लिया जाए कि वो टारगेट्स पे आते हैं, तो जिस अंदाज में वो तबाही फैलाते हैं, ये तो मुमकिन ही नहीं है। लोगों ने पहले जो था वेस्ट को शायद ये खबर ही दी गई कि वहाँ करते हैं, वो नहीं कहते जी बड़ी पिन पॉइंट सर्जिकल स्ट्राइक्स होती हैं, ये बहुत बड़ा झूठ है जो मगरब में अमेरिका बोलता रहा है।
जी गुलाम अकबर साहब,
अमेरिका
बहुत शुक्रिया, मैं
बेसिकली
फिर हाजिर
एक
हूँगा आपकी खिदमत में।
बारबेरियन सिविलाइजेशन है।
जी बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त चलते हैं लंदन, जहाँ पर बरसगीर के मुमताज़ दानिश्वर और सियासतदान अली जाफर जैदी साहब ने ड्रोन हमले और ड्रोन हमलों के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ पाकिस्तान यानी इमरान खान की ज़ेर क़्यादत अमन मार्च के मकासद, उसकी कामयाबी और नाकामी पर अपने तबसरे का कुछ यूँ इजहार किया और अपने ख्याल कुछ यूँ बयान किए।
जी, पाकिस्तान इस वक्त हालत जंग में है, और हालत जंग में अमन की कोई भी बात अगर करता है या उसकी कोशिश करता है तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन देखना यह है कि क्या अमन रैलीज निकालने से अमन कायम होता है, या अमन कायम करने के लिए कुछ और भी दरकार है। अब वहाँ की तमाम सूरत हाल को अगर देखें तो उसमें आज तक इमरान खान साहब ने जितने भी जलसे किए हैं, जितनी भी रैलीज निकाली हैं, उसमें उन्होंने जो इस वक्त माशरे में मसाइल हैं उनको हाईलाइट किया। महंगाई है, उस पर काफ़ी वो बोलते हैं, करप्शन है, नाअहली है, और ये अमन ड्रोन हमलों के हवाले से। मगर ये तमाम वो मसाइल हैं जिनका पाकिस्तान के हर शहरी, हर बच्चे, हर खातून, हर शख्स फर्द को ये मसाइल मालूम है। इन मसाइल का हल क्या है? इमरान खान साहब ने आज तक जितने भी मसले उठाए हैं, हाईलाइट किए हैं, उनका हल उन्होंने आज तक नहीं दिया, ना ही उनके पार्टी प्रोग्राम में कहीं किसी भी मसले का हल सीरियस अंदाज में, जिस पे रिसर्च और एकेडमिक बात की गई हो, वो नहीं नज़र आता। तो फिर ये सब क्या था, यानी ये इस रैली का मकसद क्या था? तो मैं ये समझता हूँ कि इस रैली के ज़रिए उस रीजन में, ख़ास तौर पे वज़ीरिस्तान के इलाके में, वो तमाम ग्रोह या इंटरेस्टेड पार्टीज़ इंटरनेशनल सीन पर जो हैं, अमेरिका है, पेंटागन और CIA के अपने अपने वहाँ इंटरेस्ट हैं, अफ़गानिस्तान का इंटरेस्ट है, इंडिया का इंटरेस्ट है, और इसी तरह दीगर जो फोर्सेस हैं उनका इंटरेस्ट है। तो उन तमाम फोर्सेस को ये बावर कराना मैं समझता हूँ इनके लिए ज़रूरी था कि मैं भी इस गेम में, पाकिस्तान की सियासी गेम में, मैं भी एक प्लेयर हूँ और मुझे भी रिकॉग्नाइज़ किया जाए, जो गालबन अभी तक वेस्ट में उस तरह की रिकग्निशन इनको नहीं मिल पाई थी। अब इस रैली के नतीजे में बहुत से जो मगरबी अबलाग CNN से लेके, और फिर इनके साथ बहुत से अमेरिकन्स भी थे, सिविल सोसाइटी की भी ख़वातीन, और ये सब जो मामला ये लेकर गए साथ, तो उससे ये हाईलाइट हुआ कि पाकिस्तान में ड्रोन हमलों के हवाले से इमरान खान बात कर रहे हैं। और उसके साथ ये भी सामने बात आई है और रिकग्नाइज़ की गई है कि इनके साथ फ़ौज का कोई टकराव भी नहीं है। और तो जब ये दो बातें अगर हों तो वो ताकतें जो कि पाकिस्तान में और तीसरी दुनिया के जो ममालिक हैं उनमें हुक्मरानों की तब्दीलियां करते हैं, हुक्मरान लाते हैं, हुक्मरान को वो ले जाते हैं, उनका तख्ता उलटते हैं, तो उन क्वार्टर्स में इन्होंने ये रजिस्टर करवा दिया है या करवाने की कोशिश की है कि मैं भी इस रेस में हूँ और मेरी तरफ भी तवज्जो की जानी चाहिए, वरना सबको मालूम है कि ये राइट विंग रिएक्शनरी सियासत और इनकी सोच रही है। पाकिस्तान के लिए कोई माशर्ती ऐसा प्रोग्राम जिसमें वर्किंग क्लास, मेहनतकश मजदूर, किसान और इस्तेहसाली निज़ाम के खात्मे की कोई बात हो, वो नहीं है। और कोएग्जिस्टेंस की बात है, मौजूदा निज़ाम में रहते हुए, इसी पार्लियामेंट के होते हुए, जागीरदारों की शमूलियत इनकी पार्टी में होते हुए, और जितने भी क्रिमिनल्स जो दूसरी पार्टीज़ में हैं, सियासी पार्टियों में, उनको भी अपने यहाँ शामिल करते हुए, अगर ये समझते हैं या दुनिया ये समझती है कि वहाँ पर कोई बुनियादी तब्दीली आएगी और ये कोई बहुत लिबरल प्रोग्रेसिव सेकुलर अंदाज़ की सियासत जो कि पोर्ट्रे किया जा रहा है कर पाएंगे, मैं नहीं समझता कि ऐसी बात है। ये अपनी अप्रोच में काफ़ी राइट विंग हैं, रिएक्शनरी हैं, और ये मुल्क में शरीयत के नफाज के ज़रिए ही चीज़ों को बेहतरी उसमें देखना चाहते हैं। और शरीयत का नफाज में कौन इंटरेस्टेड है? सऊदी अरब और सऊदी अरब का आका, और उनका अपना एक ख़ास किस्म की शरीयत है जिसको वो मुसलमान ममालिक पर इम्पोज करना चाहते हैं। तो इस रैली का जो मकसद था इनकी ज़ात के हवाले से, वो तो शायद इनको अचीव इन्होंने कर लिया हो, लेकिन इस रैली का मकसद अमन की जानिब कोई कदम का उठाया जाना, मैं नहीं समझता कि इस मकसद का कुछ भी किसी नतीजे पे पहुंचा होगा या इस मकसद का कोई हसूल हो सकेगा या हो पाएगा।
ये थे लंदन में मुकीम मुमताज़ दानिश्वर और सियासतदान अली जाफर ज़ैदी। चलते हैं इस वक्त एक बार फिर पाकिस्तान, जहां पर टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा और मेंबर कौमी असम्बली मोहतरमा यासमीन रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा।
वालेकुम अस्सलाम
जी। मोहतरमा, इमरान खान साहब अमन मार्च से कबल भी और अमन मार्च के बाद भी आपकी पार्टी या आपकी हुकूमत पर काफ़ी बरसे काफ़ी नाराज़ हुए। जाने से पहले उन्होंने कहा कि अगर मुझे कुछ हुआ तो इसकी ज़िम्मेदारी सदर पर होगी, और वापसी पर भी उन्होंने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अगर हुकूमत क़याम अमन के ताल्लुक से मेरा साथ देती तो ये एक बेहतरीन और सुनहरी मौका था और इसका फ़ायदा हुकूमत को भी हो सकता था। तो हुकूमत ने क्यों साथ नहीं दिया उनके अमन मार्च का, आपके ख्याल में?
जी देखिए, मैं समझती हूँ कि हुकूमत को इस वक्त ज़रूरत है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो हुकूमत का साथ दें, क्योंकि आपके इम्प्लीमेंटेशन या पॉलिसी प्लानिंग इस वक्त हुकूमत का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हुकूमत बखूबी वो निभा भी रही है, लेकिन पॉलिटिकल सपोर्ट दूसरी पार्टीज की तरफ से नहीं मिल रही। सब पॉलिटिकल पार्टीज में ये कहूंगी जो बाहर हैं और वो हुकूमत में आना चाहती हैं, वो अपना अपना एक पॉलिटिकल गिमिक्स कर रही हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रही हैं, और हुकूमत ने, क्योंकि ये एक जमहूरी हुकूमत है, आपको मालूम है वोट बैंक के जरिए आई है, जमहूरियत को फरोग देने वाली पार्टी की हुकूमत है, तो इसलिए पॉलिटिकल एक्टिविटी पे कहीं भी कोई कदगन नहीं लगाई गई। आज़ाद है बिल्कुल हर पार्टी अपनी एक्टिविटी करने में, मीडिया आज़ाद है अपनी बात करने में, कहीं पे कोई रुकावट या ऑब्स्टिकल खड़ी नहीं की जाती गई। तो ये कहना कि हुकूमत इनको सपोर्ट करे, मैं समझती हूँ उन्होंने एक पॉलिटिकल अपनी अप्रोर क्रिएट करना था, एक अपनी पॉलिटिकल प्रेजेंस, तो वो ठीक है, वो उनका हक बनता है, लेकिन वहां जाके ड्रोन तो नहीं रोक सकते जहां पे ड्रोन बरस रहे हैं, ड्रोन तो कहीं और से चल रहे हैं, और जी तो इनको तो वहां जाना चाहिए जहां से ड्रोन चल रहे हैं, या ताकि उनसे जाके बात करें, वो बेचारे तो खुद मुसीबत में हैं जिनके पास ये जाके बैठ गए, और उनके लिए एक सिक्योरिटी रिस्क जो है, कोई वाकया हो भी सकता था, मुल्क में हालात ऐसे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये इन्होंने वहां आगे जाने से इनकार किया कि हुकूमत रोक रही है। तो हुकूमत तो पहले दिन से ही रोक रही थी कि जी इस वजह से रोक रही थी, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, यहाँ तो ये रुके नहीं, आधे में जाके रुक गए और फिर यू टर्न ले लिया, वापस आ गए, तो ठीक है उनकी पोलिटिकल प्रेजेंस हो गई। अदरवाइज इस वक्त हुकूमत को जरूरत है कि तमाम पोलिटिकल पार्टीज आउटसाइड द पार्लियामेंट, इनसाइड द पार्लियामेंट, हुकूमत को ये कहें कि जी 1 पॉइंट एजेंडा, नेशनल सिक्योरिटी, ड्रोन पे, टेररिज्म पे हम आपका साथ हैं, अदरवाइज अपनी अपनी पॉलिसीज हर पार्टी की हैं और उनको इम्प्लीमेंट करने का राइट भी है। तो ये तो उल्टा बात इन्होंने कर दी कि जी हुकूमत इनको साथ दे, इनको चाहिए कि हुकूमत के साथ खड़े हों और डेढ़ इंच की मस्जिद अलहदा नहीं बनाए, क्योंकि नेशनल जो गोल्स और एम्स अचीवमेंट्स होती हैं वो इस तरह नहीं होती, वो तो हुकूमत के जरिए ही हासिल की जा सकती है। और यकीनन ड्रोन अटैक्स को हम सब कंडेम करते हैं, हम हुकूमत में होते हुए उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, ये बहुत ज्यादा है ड्रोन बरसाना, और ये इलीगल है, इनह्यूमन है, और इनको फौरन बंद होना चाहिए।
मोहतरमा, एक बात तो सब तस्लीम करते हैं कि मुल्क के वसीतर मफाद के लिए कोई भी पार्टी, कोई भी हुकूमत जाहिर है कि वो आगे बढ़ सकती है। अगर ये फ़र्ज़ कर लिया जाए कि इमरान ख़ान साहब, जैसा कि वो ख़ुद वो कहते हैं और बहुत से हल्के भी कह रहे हैं कि वो मुखलिस हैं इस मामले में कि ड्रोन बंद होना चाहिए, और जाहिर है कि आपकी पार्टी और आपकी हुकूमत भी इस बात पर इसरार कर रही है और हुकूमत से मुतालबा, यानी अमरीकी हुकूमत से बार बार मुतालबा भी कर चुके, तो अब अगर फ़र्ज़ ये कर लिया जाए कि वो आगे बढ़े थे ड्रोन हमलों के ख़िलाफ़, एक उन्होंने रैली निकाली थी, तो अगर हुकूमत की तरफ से जैसा कि वो ख़ुद कह रहे हैं हिमायत या सपोर्ट मिलती, तो क्या इसमें हुकूमत का क्या नुकसान था?
देखिए, मैं समझती हूँ कि हुकूमत क्या इनकी हिमायत करती, अब हुकूमत अपने तमाम काम छोड़ के इनकी रैली में तो नहीं शामिल हो सकती थी ना, तो जाहिर है हुकूमत को तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। और लेकिन आपने जैसे कहा कि ये हर जगह से इसको कंडेम किया जा रहा है, तो मैं समझती हूँ कि जैसे प्रेसिडेंट साहब ने यूएन की जनरल असेंबली को एड्रेस करते हुए पहले जो 3 नुकात थे बहुत जरूरी, उसमें एक जो फिल्म हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसमें बनाई गई, उनकी उसमें उनकी इज्जत को मलूज़े खातर नहीं रखा गया, उसको कंडेम किया, ड्रोन अटैक्स को की पे बात की गई, बड़ी स्ट्रांगली बात की, उधर तमाम यूनाइटेड नेशंस मौजूद थे, उनके नुमाइंदगान हेड ऑफ द स्टेट्स मौजूद थे, उनकी उनकी सपोर्ट हासिल करने की कोशिश की गई, कश्मीर कॉज पे बात की गई। इस तरह के फोरम्स हैं जहां से हमें इंटरनेशनल सपोर्ट चाहिए होगी कि ये जो इनह्यूमन एक्ट हो रहा है पाकिस्तान में, इंटरवेंशन हो रही हैं ड्रोन के जरिए, तो ये बंद हो ना, कि जिन लोग तो वो लोग तो पहले ही बेचारे मुश्किल में हैं, उधर जाके हम, मुझे नहीं समझ आई कि पहले इन्होंने गालबन शुमाली वजीरस्तान या जुनूबी कहा, फिर ये अपना इन्होंने वो भी बदल दिया, अपना वेन्यू भी बदल दिया कि वहां हम नहीं जा रहे, अब हम वहां जा रहे हैं, और फिर इनका क्या मकसद, इनका क्या था कि ड्रोन बंद करवाना, तो क्या ड्रोन बंद हो गए या कम हो गए, ये सवालिया निशान है। क्योंकि मेरी नजर में मैं यही कहूंगी कि इट वाज जस्ट अ पॉलिटिकल एक्टिविटी, उन्होंने अपनी पार्टी का शो करना था, द प्रेजेंस आने वाले, इलेक्शन आने वाले हैं, वो चाहते हैं कि उनके पॉलिटिकल स्ट्रेंथ उनको मिले, तो वो ठीक है, उस हद तक वो रैली ठीक थी, उनको राइट है, वो जहां भी रैली निकालना चले हुकूमत कहीं भी रुकावट नहीं बनेगी। लेकिन एक्चुअली तो हमने इंटरनेशनल सपोर्ट इस वक्त लेनी है कि वो अमेरिकन को प्रेशराइज करें कि ये ड्रोन अटैक्स और इस तरह की इंटरवेंशन को रोकें, तो वहां जाके तो हमें मकसद नहीं हल होता। ये तो बैठ के इंटरनेशनल फोरम्स या नेशनल फोरम्स पे बैठ के बात करने की है, ना कि लोगों को बाहर निकाल के, तो वो नहीं हम ड्रोन को खत्म करा सकते या बंद करा सकते। तो उनकी स्ट्रेटजी सिर्फ पॉलिटिकल मोटिव था उनका, ठीक है, वो उनका राइट है वो।
ये बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर हूँगा मोहतरमा आपकी खिदमत में, आप टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहेगा बराए करम। गुलाम अकबर साहब, आपने दोनों हमारे मेहमानों की लंदन से और इस्लामाबाद से दोनों मेहमानों की गुफ्तगु सुनी। सवाल ये होता है कि पाकिस्तान के भी बहुत से हलकों और अखबारात और जरायत ने लिखा कि टांग से वापस आने के बाद इस्लामाबाद में बजाय इसके कि इमरान खान साहब अपनी रैली और इसके मकासद उसकी कामयाबी के बारे में कुछ कहते, वो पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी और जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह फजल रहमान पर जम कर बरसे। तो ये जो इन दोनों शख्सियात पर तनकीद थी, इसका क्या मकसद हो सकता है आपके ख्याल में, और उनकी तनकीद किस हद तक बजा थी आपके ख्याल में?
देखिए जी, वो खातून जो था ना वो अपना हक निभा रही थी, लेकिन इन्होंने शायद ओबामा जबार से नहीं पढ़ी, उनमें तो जरदारी साहब के साथ ये बयान मंसूब है कि आप ड्रोन मारते जाएँ, हम एहतजाज करते जाएंगे, आप हमारे एहतजाज की फिक्र न करें। मतलब ये पहली हुकूमत है हमारी तारीख की जो बाकायदा अपॉइंट की गई है वाशिंगटन से, यानी ये तो ये कह रहे हैं ना कि अवामी हुकूमत है और इंतखाबी, इनका कितनी 1,01,20,00,000 इनका टोटल वोट बैंक है और 18 करोड़ की आबादी में ये जो हमारी तकदीर के फैसले करें, ये अमेरिकन ने ये हुकूमत नाफिज की है हम पर, और एक ऐसे पीरियड में उससे पहले जो हुकूमत थी परवेज मुशरफ की, उसने अमेरिका की हिमायत हासिल की थी, पाकिस्तान को इस खौफनाक जंग में धकेल कर अमेरिका का अलाई बनाकर इन्होंने वो परवेज मुशरफ की डूब मोर से वो मुतमिन नहीं थे, उन्होंने अपने आदमी ला के बिठा दिए हैं। हमारा वजीर दाखिला उनका अपॉइंटेड है, हमारा पहले सफ़ीर जो था हुसैन अकानी वो उनका अपॉइंट, हमारा सदर उनका अपॉइंटेड है। यानी ये जब भी अभी ये इधर ये रैली हुई, इन्होंने ये मोहतरमा ने फरमाया, देखिए ये इमरान खान 2003 से अमेरिका के साथ पाकिस्तान की अलायंस की मुखालफत कर रहे हैं, इज़ ऑन रिकॉर्ड। उन्होंने बार 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 ये कहा है कि जब तक हम इस जंग में अमेरिका की मदद करना बंद नहीं करेंगे, हम इस जंग से निकलेंगे, हमारी जंग नहीं है, ये अमेरिका की जंग है जो वो इस खत्ते पर मुसलत कर रहा है, उस वक्त तक जो है पाकिस्तान में अमन कायम नहीं होगा। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि इस जो ये अमन मार्च था, इसमें अलायंस किसकी हुई है? मौलाना फजल रहमान, ये वो रिएक्शनरी जो हमारे जैदी साहब जो थे वो लिबरल फासिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू बयान फरमा रहे थे, लिबरल फासिस्ट मौलाना फजल रहमान और हमारी हुकूमत, ये इस सारे खेल में यकजा थे, इन्होंने ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया। अगरचे नून लीग जो है और जमात इस्लामी, देखिए जमात इस्लामी इसमें नहीं बोली बिल्कुल, नून लीग का यह है कि वो पॉलिटिकली ख़तरा महसूस कर रहे हैं इमरान खान से, और पंजाब में उनका खेल वो समझ रहे हैं कि ख़त्म हो रहा है, लेकिन उन्होंने ड्रोन यानी किसी किस्म की ऐसी मुखालफत नहीं की। ये इस वक्त पाकिस्तान जो है बिल्कुल एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जब उसे फैसला करना है कि उसने अमरीका की ग़ुलामी में ज़िंदगी बसर करने या आज़ाद होना है। देखिए ना, पूरे खत्ते में एक वेव चली है, हमारे भाई ने कहा कि हमारे पास कोई प्रोग्राम नहीं है, प्रोग्राम देखिए वो जिस वो लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट पॉलिसी की बात है, वो दौर गुजर चुका, वो दफन हो गया कम्युनिज्म के साथ, अब जो है ना इट्स अ न्यू रियलिटी। आप मिस्र में क्या हुआ है, लीबिया में क्या हुआ है, आप तुनिस में क्या, ईरान सबसे बड़ी मिसाल है, क्या ईरान के आप इनकलाब को रिएक्शनरी कहेंगे, इसकी शरीयत को आप रिएक्शनरी कहेंगे? देखिए ये सारे नारे हैं, ये लोग ख़तरा महसूस खौफ महसूस कर रहे हैं कि पाकिस्तान में भी ये सूरत हाल पैदा हो रही है। मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान जो है उन्होंने खुद ही कह दिया कि वो जो है ना रिएक्शनरी और शरीयत लाना चाहते हैं, तो हर मुसलमान जो है अगर वो मुसलमान है तो वो शरीयत ही लाना चाहेगा और वो कुछ नहीं लाना चाहेगा, या ये मेरा जो है ना उनके बारे में स्टेटमेंट है। जहाँ तक ये खातून बोल रही हैं, इनको तो ये भी नहीं पता कि हमारी हुकूमत जो है ये मेमो गेट का बताए, इस वक्त हमारे मुल्क में दो पैरेलल गवर्नमेंट्स चल रही हैं। जब ये वाक़या, एक वज़ीर दाखिला हमारा भाग गए वाशिंगटन में, वहाँ कह दिए कि मैं उनसे कह रहा हूँ ड्रोन बंद करो, मैंने उनको कह दिया है कि ये भी करो वो भी करो, मतलब एक दिस नाम से। उस वक्त हमारा चीफ ऑफ स्टाफ जो है रशिया का दौरा करके आया है। देखें ना, यहाँ नई रियलिटीज़ पैदा हो रही हैं। अब इन नई रियलिटीज़ में अमेरिका का इस खत्ते में कोई मरकजी रोल अदा करना मुझे मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। दिस इज़ द एंड ऑफ देयर मिलिट्री एडवेंचर इन दिस रीजन। और ये इंतखाबात हो जाएं, इनके जो इंतखाबात जो 6 नवंबर को आ रहे हैं, आप देखिएगा कि इस वक्त अभी तक, आज तक मैंने पूरी कैंपेन में उन्होंने अफगानिस्तान का नाम नहीं लिया। ईरान को इन्होंने टारगेट बनाने की कोशिश की, लेकिन उससे भी भाग गए हैं। देखें ना, मुस्लिम वर्ल्ड जो है अब एक नई जियोपॉलिटिकल रियलिटी यहाँ पैदा हो रही है। नए लीडर आ रहे हैं, तुर्की में उर्दगान आया, मिस्र की क़यादत तब्दील हुई, ईरान का इनकलाब 33 साल बाद भी आज भी उतना तवाना है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा तवाना है, क्योंकि उसमें कई डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हो चुके हैं। अब ये भी नहीं कह सकते कि यहाँ जमहूरियत नहीं है। और पाकिस्तान में चेंज के लिए ये जो उन्होंने कहा है कि ये रिएक्शनरी पार्टी है, ये स्टेटस को फोर्सेस के ख़िलाफ़ एक अवाम की तहरीक है। पहले जो 2008 के अगर इलेक्टोरल वोट्स देख लें, उसमें कुल 2 करोड़ और 25 लाख लोगों ने वोट दिया 18 करोड़ की आबादी में से, और उसमें से जाली वोटों की तादाद जो है वो भी लोगों को मालूम है। एक्चुअल इस दफ़ा जो इमरान खान डिपेंड कर रहे हैं वो उस वोट बैंक पे कर ही नहीं रहे, उसमें हो सकता है कि लोग टूट के आएँ। वो एक नया, एक समझ लिए कि एक नई नस्ल उठी है, वो उसके साथ है।
ये बहुत शुक्रिया, मैं अगला साल यास्मीन रहमान साहब से
के वोटर्स में ये 4-5 करोड़ नए वोटर होने हैं, उन्होंने फैसला करना है पाकिस्तान के मुस्तकबिल का। ये लोग उससे डर रहे हैं। ये जरदारी मियां साहब भी जो हैं वो बेसिकली वो 30 साल सियासत का एक मोरा है, वो भी उसी ये बांट के खाने वाले लोगों में से हैं। दे हैव बोथ लूटेड दिस कंट्री ड्राई।
बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर हूँगा। गुलाम अकबर साहब, मोहतरमा यास्मीन रहमान साहब, आपने गुलाम अकबर साहब जो कि खुद तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा हैं और साफ़ी भी हैं, उनकी गुफ्तगू सुनी, और उन्होंने जाहिर है कि आपकी पार्टी और आपकी पार्टी की क़्यादत पर जो सवालिया निशान लगाए, और ये कहा उन्होंने कि ड्रोन हमलों के बारे में आसिफ जरदारी साहब कहते हैं कि आप करते रहिए, हम मजम्मत करते रहेंगे, या ये कि वो खुद अमरीका के मुकर्रर करदा अपॉइंटेड सदर हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उनके जवाब में?
जी, सबसे पहले तो मैं इनके बहुत विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, मैं इनको जानती नहीं इतना, इन्होंने ये कहा कि इन खातून को कुछ मालूम नहीं है, तो यकीनन मुझे कुछ मालूम नहीं, यकीनन ये बहुत बाइलम होंगे, इस बात को मैं एडमिट करती हूँ। एक तो ये तहरीक इंसाफ को ये जोम क्यों हो गया है कि जी बाकी सब आम पोलिटिकल पार्टीज पे सिर्फ इल्ज़ाम लगते हैं और सब कुछ हम ठीक करेंगे, ये एक गलत, मैं समझती हूँ कि बहुत ही एटीट्यूड है। इस एटीट्यूड ने हमारे मुल्क को पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँचाया है। मैं उम्मीद करती थी कि थोड़ी मेच्योरिटी आएगी, बट आज इनकी बात सुन के बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। कमिंग बैक टू द टॉपिक, आई वुड से कि ये कहीं अमेरिका से नहीं आई ये हुकूमत, वोट बैंक, जितने लोगों ने वोट कास्ट किया दुनिया का एक असूल है, तो जितना कास्ट वोट हुआ उसी की मेजोरिटी को आपने 2002 में देख लें और 2008 में देख लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट वोट बैंक लेके आई, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी, फेडरेशन की जमात बन के उभरी, हर सूबे हर शहर हर जगह से उनकी नुमाइंदों को वोट बैंक में मिला और उन वो इलेक्ट होके आए। तो ये बिल्कुल कह देना कि अमरीका कुछ नहीं कर सकता, अगर कोई चेंज ला सकता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी के बाद, तो पीपल ऑफ पाकिस्तान, नोबडी एल्स। अमेरिका कुछ भी करना चाहे वो नहीं कर सकता जबकि तक के लोग वोट नहीं डालेंगे, ये पता नहीं कहाँ बैठे हुए हैं, ग्राउंड रियलिटीज कुछ और हैं। सेकेंडली, अमेरिका के खिलाफ पहली बार अगर किसी हुकूमत ने स्टैंड लिया, नेटो सप्लाईज को मुअत्तल किया गया, शमसी एयरबेस को रोल बैक किया गया, अरसे से वो अमरीका के उसको इस तरह इस्तेमाल थी, किसी की में जरूरत नहीं थी, लेकिन वो जैसे ही सलाला का स्लॉटर इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद उसको रोल बैक किया गया। बोन कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें पाकिस्तान की शिरकत के बगैर वो कॉन्फ्रेंस जो है उसका वो वजन नहीं बनता था, लेकिन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री ये इस वक्त भी हुकूमत ने एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया कि हम उस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट करेंगे। तो मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से ये सारा हुकूमत ने अमेरिका के जो अनड्यू प्रेशर्स थे उनके अगेंस्ट स्टैंड लिया, तो यकीनन ये माजी में कभी नहीं हुआ, हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि ऐसी बात हुई हो। और ये कहना कि जी ये उसने हुकूमत बना दी, उसने कोई कुछ नहीं बना सकता। वोट बैंक इज द ओनली वे जिससे आप चेंज ला सकते हैं। और ये कह देना लूटेड एंड प्लंडर्ड, ये बहुत आसान है, मैं भी इन पर कह सकती हूँ। ये जब तक कोई एविडेंस नहीं होए, जब तक कोई बात ना हो, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली या कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज या इल्जामात लगाना बहुत आसान हो गया है। और ये इनको वेरिफिकेशन कोई नहीं होती और ये बात ऐसे बन जाती है। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज कितनी दहाइयाँ गुजर गई, उन्होंने इस्टेब्लिश किया कि वो हमेशा वोट के जरिए हुकूमत में आते हैं और पीपल ऑफ पाकिस्तान उनके लिए वोट करते हैं। और आइंदा भी कोई एंटी अमेरिकन पॉलिसीज नहीं होंगी, जो पॉलिसीज भी होंगी, जो फॉरेन पॉलिसी पहली बार पार्लियामेंट में डिस्कस की गई, जहाँ पे तकरीबन तमाम पार्टीज जो है उनकी नुमाइंदगी है, उन्होंने अपनी रिजर्वेशन शो की गई। सिक्योरिटी पे दो ब्रीफिंग्स हुई माजी में, कभी नेशनल असेंबली में अस्करी की आदत ने आके ब्रीफिंग्स नहीं दी। बहुत सारे पॉजिटिव स्टेप्स हुए, 18वीं तरमीम में सूबों को एम्पावर कर दिया गया, रिसोर्सेज दे दिए गए। तो ये कहना कि जी अमेरिका ने आके हुकूमत बना दी, ये ख्वाब देखना छोड़ दे, रियलिटीज को फेस करे और लोगों के वोट पे इत्मीनान करे।
बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में, आप टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहिएगा। एक बार फिर लंदन चलते हैं जहाँ पर अली जाफर जैदी साहब ने मौजूदा जो सूरत हाल है पाकिस्तान की और अमन मार्च जो वजीरिस्तान की तरफ निकाला गया, उस पर मज़ीद अपने ख्याल का इजहार कुछ इन अल्फाज में करते हैं।
देखें, वजीरिस्तान में जाने की इजाज़त का जहाँ तक ताल्लुक़ है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, वजीरिस्तान में जो वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं वो बहुत से हैं और उसमें उस पूरे रीजन में कई तरह के तालिबान हैं, उसमें पाकिस्तान की हुकूमत भी है, फ़ौज भी है, अफ़गानिस्तान भी है, अमेरिका भी है, सऊदी अरब फाइनेंस लोग भी हैं। तो उस रीजन में इनको खुली छुट्टी देना या उनको वहाँ जाकर वो बात जो कि वहाँ के अवाम में मकबूल है, ड्रोन हमलों के ख़िलाफ़ वहीं नहीं पूरे पाकिस्तान में उसके ख़िलाफ़ एक रद्द अमल है, तो इनको रोकने का मतलब ये था कि, और जिसका शायद मकसद हासिल भी हो गया हो, कि वहाँ जाकर ये वहाँ के अवाम की जो इमीडिएट प्रॉब्लम है उससे अपने आप को अगर एसोसिएट करेंगे तो उसमें फिर इनको सियासी फ़ायदा होगा। अब ये सब दुनिया के सामने ये कंट्रडिक्शंस मौजूद हैं, बल्कि तालिबान और वो मदरसे जहाँ से ये तालिबान और ख़ुदकश हमले बनाने वाली फैक्ट्रियाँ जो हैं उनके यहाँ, तो जो तालिबान का सिलेबस है वो भी नेब्रास्का यूनिवर्सिटी से छप कर आता है, सऊदी अरब फाइनेंस करता है, और ये वजीरिस्तान में ही नहीं है, वहाँ तक जाने के जितने रास्ते हैं उन सब में ये फैक्ट्रियां हैं, मदरसे जिन्हें कहा जाता है, और वहाँ से सैकड़ों की तादाद में ये बम बांधकर मासूम मुसलमानों को मारने वाले जो कौम है जिसको दहशतगर्द कहा जाता है वो पैदा किए जाते हैं, और वो तभी पैदा होते हैं जबकि ड्रोन हमले होते हैं। ड्रोन हमले होते हैं, मासूम आदमी मारा जाता है, उसके रद्द अमल में वहाँ से फिर दहशतगर्दों को रिक्रूट करना आसान होता है। चुनाचे ड्रोन हमलों के बारे में पाकिस्तान की हुकूमत और विकीलीक में ये आ चुका, अब तो छप भी गया कि इनका अरेंजमेंट है कि हम पार्लियामेंट से भी और हुकूमती सतह पे भी रद्द अमल करते रहेंगे, एहतजाज करते रहेंगे, हम ये करते रहेंगे, आप अपना काम जारी रखें, आप ड्रोन हमले करते रहें, हम एहतजाज करते रहेंगे। चुनाचे उस खित्ते में जो खेल खेला जा रहा है उसमें हुक्मरान भी शामिल हैं, उसमें सियासतदान भी शामिल हैं, और वो सब के सब अमेरिका का जो वहाँ पर पॉलिटिकल एजेंडा है उसके वो सब सर्वियंट हैं, उसकी खिदमत कर रहे हैं और उसका मुआवजा वसूल कर रहे हैं किसी ना किसी शक्ल में। तो वहाँ पर वजीरिस्तान में जब इस तरह का इंटरेस्ट है और क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है मुख्तलिफ ग्रोहों का और पार्टीज़ का और अफराद का और पॉलिटिकल फोर्सेस का, तो उसमें इनकी एंट्री होने का मतलब ये था कि ये अपना शेयर उसमें लें, जो कि शेयर करने को वहाँ के जो और प्लेयर्स हैं वो तैयार नहीं है। चुनाचे वज़ीरिस्तान में इनका ना जाने दिया जाना और उसको उनको रोकना, उसका मकसद सामने वाजे है कि वहाँ जाकर ये पॉलिटिकल अचीवमेंट जो है या वहाँ के अवाम के साथ अपना कोई रिश्ता ना जोड़ पाएँ और सियासी अचीवमेंट्स या सियासी हमदर्दियाँ हासिल ना कर सकें।
ग़ुलाम अकबर साहब, अभी गुफ्तगु में मोहतरमा यास्मीन रहमान साहिबा ने भी एक सवाल किया गया आपसे और पाकिस्तान के अखबारात ने भी ये सवालात किए हैं, तो ज़ाहिर है कि आपसे जवाब चाहूँगा कि क्या जो अमन मार्च निकाला गया वज़ीरिस्तान की जानिब ड्रोन हमले रुकवाने के लिए, तो आप इसमें कामयाब हो जाएंगे और अब ड्रोन हमले नहीं होंगे या कम हो जाएंगे, या अमेरिका पर इसका क्या असर पड़ेगा आपके ख्याल में?
देखें, ड्रोन हमले सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत रुकवा सकती है और इमरान ख़ान पाकिस्तान की हुकूमत का हिस्सा नहीं है। ये आप जहन में रख लें कि कोई भी अगर पाकिस्तान की हुकूमत चाहे फैसला कर ले तो आज ड्रोन हमले रुकवा सकती है। हम एक सॉवरेन नेशन है। मसला ये है कि जो इमरान खान बार बार ये बात कहते हैं कि ये लोगों को धोखा देने के लिए कहते हैं कि भाई ड्रोन हमले रोको, आज तक देर इज़ अ टैसिट एग्रीमेंट शुरू से चला आ रहा है, डामाडोला से शुरू हुआ है ये। परवेज मुशर्रफ से इसके पहले मुजरिम वो थे जिन्होंने अमेरिका के साथ कोई अंडर हैंड डील किया जिसके नतीजे में उन्होंने देखिए, अगर आप देख जॉर्ज बुश के ज़माने में सिर्फ 8 ड्रोन हमले हुए थे, उसके बाद ओबामा के आने के बाद सैकड़ों ड्रोन हमले हो चुके हैं और पता नहीं कितने ख़ानदान जो है ना इसमें उजड़े होंगे। और अगर आप मेरे भाई ने जहरी साहब ने कहा कि जब अब सबसे पहले कि रिक्रूटमेंट आसान हो जाती है, खुदकुश बम्बार जो है दहशतगर्द ये कौन कर रहा है, इन्होंने कहा कि सऊदी अरब कर रहा है, अगर सऊदी अरब कर रहा है तो सऊदी अरब का पुष्ट पनाह कौन है? अमेरिका। मैं फिर ये बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ पाकिस्तान की सरजमीन पर जो जंग लड़ी जा रही है उसके पीछे अमेरिका है और ये पाकिस्तान का बच्चा बच्चा किसी में कहने की जरूरत नहीं है, मैं ये जरूरत कर रहा हूँ और ये हमारी हुकूमत को भी मालूम है। ये सिर्फ पैसा लेने के लिए वहाँ भागते हैं। जब पाकिस्तान की हुकूमत ये फैसला कर लेगी कि हमें आज़ादी अजीज़ है, देखिए अमेरिकन आखिर हमने सराला का वो इसका क्रेडिट हमारी हुकूमत ले रही है। हकीकत यह है कि जब मेमोग्रेड का इशू आया उससे पहले भी जब ये कैरी लूगर बिल आया था तो हमारी जो हुकूमत है बुनियादी तौर पर अमली तौर पर दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी। देर वॉज अ पैरल गवर्नमेंट रनिंग, एक फैसले जरदारी साहब या इनकी हुकूमत कर रही थी, दूसरे फैसले इनविजिबल गवर्नमेंट कर रही थी जो आज भी नाफिज हैं। अगर अभी तक शुमाली वजीरिस्तान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन नहीं हुआ, जो अमेरिका का बुनियादी दबाव है पाकिस्तान पे कि वो जंग का दायरा फैलाएं, तो किस वजह से हमारी हुकूमत जो है ना वो तो रहमान मलिक तो रोज़ बयान देते हैं कि 9 खुदकुश हमले हो जाएंगे अगर इमरान खान ने, यानी वो डराने की, देखिए कि हमें पूरी इतला है कि 9 खुदकुश बम्बार तैयार हैं इमरान खान को उड़ाने के लिए। यार अगर आप बात कहें इसके बावजूद इमरान खान गए, ये एक मैं बात बताऊं कि ये ज़िंदगी का जो है ना ख़तरा होता है, यानी कितने ये इसके लिए सिर्फ बहादुरी नहीं, इसके लिए फेथ चाहिए मुकाबला करने के लिए। इमरान खान पास फेथ थी, मेरी उनसे बात हुई, मैंने कहा खान साहब इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, ये बेहतरीन मौका होगा आपके दुश्मनों को कि आपको रास्ते से हटा दें। उन्होंने कहा अगर अल्लाह को यही मंजूर है तो फिर हो जाने दें। अब मैं एक ऐसा आदमी जिनको मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, मैं पार्टी में मेरा कितना फ़ाल किरदार है इससे मैं हट के बात कर रहा हूँ। आई पर्सनली नो द मैन, ही इज़ अ मैन ऑफ फेथ, और मैं समझता हूँ कि जब मैन ऑफ फेथ इफ़ ही कम्स टू पावर, तो लोगों के जो अंदाजे हैं कि वो सेकुलर उसकी सोच है, कोई कहता है वो तालिबान खान है, यानी देखना दो मुख्तलिफ एहसानुल्लाह एहसान जो है जो तालिबान का तर्जमान है वो कहता है जी ये सेकुलर मगरबज़दा है, और हमारे मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं जी ये यहूदी एजेंट है, वहाँ सेमोनियों का एजेंट एजेंडा पूरा करने के लिए आया है, और हमारे जो लिबरल जो है वो कहते हैं ये तालिबान खान है, ये तो तालिबान के साथ मिला हुआ है। अब ये सोचें कि एक ही बात सच होगी ना, सच ये है कि वो पाकिस्तानी है, हम अपने इस खत्ते से अमेरिकन्स को भगाना चाहते हैं और इंशाल्लाह वो वक्त अब करीब आ रहा है।
जी बहुत शुक्रिया आपका मोहतरमा यास्मीन रहमान साहबा, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और उन्होंने कहा कि ड्रोन हमले हुकूमत चाहे तो एक दिन में रोकवा सकती है और ज़ाहिर ये काम हुकूमत का है और हम हुकूमत में शामिल नहीं, तो क्या ये इनका कहना अपनी
देखिए,
जगह
मैं
पर
समझ रही
बिल्कुल
हूँ कि
सही है।
हुकूमत ने अगर ये कहें कि जी मेमोगेट और विकीलीक्स, तो वो इतने बेसलेस पेपर्स थे, इतने बेसलेस पेपर्स थे, फिर उन पे यकीन किस तरह किया जा सकता है? कोई उनका सर पैर कोई कुछ नहीं मालूम कि वो कहाँ से आए, कहाँ से निकले, किसने निकाले। उसमें तो सब तमाम लीडर्स की बातें थी, हर एक किस्म की, हर किस्म की बात थी, तो हम उन पे यकीन नहीं कर सकते। हमें करना नहीं चाहिए, हम एक मुहज़्ज़ब मच्योर कौम के तौर पे आए, और ये जो बेसलेस पेपर्स आते जाते रहते हैं हुकूमतों के खिलाफ, अगर इन पे हम यकीन करने लगे तो फिर आगे सिस्टम किस तरह चलेगा? यूएन के लेवल पे बात ऐसे नहीं होती। देखें, यूएन के लेवल पे सदर नहीं भी बात कर सकते थे, कि कोई प्रेशर नहीं था उन पे कि जी वो बहुत जरूरी बात करे और क्या बात करे। उन्होंने अपनी मर्जी से जो समझा कि मुल्क के लिए जरूरी है, मुल्क के अवाम के लिए जरूरी है, उस चीज को रेज किया। और कोई यूएन का फोरम ऐसा नहीं है कि वहां पे धोखाधड़ी हो कि जी अंदर खाने कुछ और हो रहा है और बाहर बात कुछ और हो रही है। एक संजीदा सीरियस फोरम है और उसको उसी स्पिरिट में लेना चाहिए। जहां तक आपने इन्होंने कहा कि जी वो जनरल मुशर्रफ ने यकीनन उस वक्त शुरू किए, अब पता नहीं वो क्या एग्रीमेंट हुआ, हमें नहीं पता। इमरान खान साहब उस वक्त भी पार्लियामेंट में मौजूद थे, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कुछ मालूम नहीं, लेकिन मैं भी मौजूद थी। तो लेकिन मैंने नहीं देखा कि उन्होंने कोई उस वक्त बात की हो, कोई रिएक्शन किया हो, कोई उसके खिलाफ ऐसा कोई उनकी तरफ से आया हो कि वो उस पार्लियामेंट को छोड़ के जा रहे हैं या नहीं जा रहे। अब उस वक्त उन्होंने, उनकी पॉलिटिकल जरूरत बनी, उन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविटी कर ली। हुकूमत पॉलिटिकल एक्टिविटी में रुकावट नहीं बनेगी, और हुकूमत चाहती है कि मुल्क में पॉलिटिक्स चले और जमहूरियत चले। और जो और लेकिन मैं ये वाजिया कर दूं कि हुकूमत बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि वो अंदर से ये कह रही है और बाहर से ये कह रही है। ये सब कहने की बातें होती हैं। बहुत मुश्किल होता है इन हालात में, जबकि आज हमारे मुल्क की एक 13 साल बची मलाला यूसुफजई को जिस बुरी तरह से अटैक किया गया दहशत गर्दों ने, अल्लाह ताला उसको जिंदगी दे। वो तो हमारे लिए एक फख्र है, हमारे कौम के लिए, कि वह तालीम का अलम लेके आगे बढ़ी थी। तो उन एरियाज में हालात को इतने आसान नहीं है कि हुकूमत ये कर दे जी वो कर दे। बॉर्डरिंग अफगानिस्तान एक थिन लाइन है, थिन डिवाइड है हमारे पास सिर्फ, और उधर हमें बहुत केयरफुल होना पड़ता है। ये बहुत पुरानी बातें हैं, जब पोस्ट कोल्ड वॉर जो लोग आके वो बसे, उनको उनसे इस मुल्क को, इस खत्ते को यकीनन पास करना है, लेकिन वो हमारी अस्करी की आदत और हुकूमत मिलके खुद कर सकती है। किसी के ड्रोन की कोई जरूरत नहीं है, ना इजाजत है। अगर ऐसी बात हो तो रोज हमें ये इजाजत ना मिले कि हम उठ के कहें कि इनह्यूमन और इलीगल एक्ट हो रहे हैं। और इस पे यकीनन इंटरनेशनल कम्युनिटी को हमारे साथ खड़ा होना है। हमें नहीं पता अमेरिका और सऊदी अरेबिया के क्या ताल्लुकात हैं। हमें अपने मुल्क को बेहतर करने के लिए नजर रखनी चाहिए, ना कि हम इधर उधर के लोगों दूसरे ममालिक में देखें। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे अपने पॉलिटिकल फोर्सेस और हमारे इंटरनेशनल जो भी फोर्सेस हैं वो साथ खड़ी होकर इस इनह्यूमन इलीगल एक्ट को खत्म करने में हुकूमत की मावन साबित होगी। और मैं इस बात पे बड़ा वाजिया मेरा स्टैंड है कि ऐसी डबल पॉलिसी नहीं चलती, वो देर पा नहीं होती। आज 4-5 साल अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत की मुदत पूरी होने को आई है। जो इस तरह की डबल पॉलिसीज होती हैं, ड्यूबियस होती हैं, वो फिजल आउट हो जाती है।
बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने हमारे मौजूदा मेहमानों की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई। हम अपने तीनों मौजूदा मेहमानों के शुक्रगुजार हैं और आपके भी। जाहिर है कि अब अमन मार्च ख़त्म हो गया है, उसकी बहस अभी जारी है। अब देखते हैं कि यह बहस कब तक जारी रहती है और इसका क्या नतीजा निकलता है। लेकिन एक बात अपनी जगह पर सब तस्लीम करते हैं कि ड्रोन हमला अमरीका की जारहियत है, पाकिस्तान के इक़्तदार आला की खुली खिलाफ वर्जी है और पूरी पाकिस्तानी कौम इसके खिलाफ है। अभी और बात है कि इस हमले को रुकवाने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाना चाहिए। जाहिर है कि पाकिस्तान के सियासतदान, आमायदीन, अकाबरीन और वहाँ के जो ज़िम्मेदार अफराद हैं, वही बेहतर इसका तरीका निकाल सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे अली बासी जी और दीगर साथियों को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।